सब करे नर बे आखर ठुकरावे। कौन कहां तक होए सगा जब देह लगा दे जावे। लाख लीख रंग आदि जे संसाबन बेद सोरासी सो लोह पुन एन बन जिए ने जे चीज ती बन ज नहीं करती पहना महानलू। चावल त्रीना संग्रह लानाज ले अधिकार गौधन बहुत न राखिए हिंसा बड़े अपार। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधिपान उन रही मन दादे ने जबे जानत सकल जहान। जते खैर खून खांसी कुटी बैर पी मत कमान रहनी दावे न जमें दान जान सकल जहान। किस प्रकार जब रामचंद्र जी के लिए राज तिलक के उपलक्ष में सारा नगर सजाया जा रहा और बंदीजन वृद्ध बखान रहे सारा नगर प्रफुल्लित हो रहा कि आज अपन नए राजा के लिए गद्दी पर बैठा देखेंगे। फिर क्या होता कि थोड़े समय में बात पलट जाती है और भरत के लिए राज देने का वचन राजा दशरथ के लिए याद कराया जाता है। क्योंकि अपना पुराना धरोहर का जो इनाम थी वह मांग रही है कि महाराज स्वयंवर के टेम पर आपने खुशी होकर हमसे कहा था कि तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए मैंने आपकी सारथी बना किया था। राजा दशरथ कहते हाँ तुमने हमारा सारथीपन किया था उस वक्त अगर तुम साजी पना ना करती तो हम उतने शत्रुओं से विजय पाने में असमर्थ हो जाते। बात तो ठीक है तुमने धरोहर में जो छोड़ा अपना आज हम देने को तुम तैयार हैं बोलो क्या चाहती हो। कहती है कि महाराज आप भी जा रहे घर छोड़ के पति भी जा रहे और पुत्र भी जा रहे अब हम किसके सहारे रहे। इसलिए महाराज भरत के लिए राज्याभिषेक कर दिया जाए तो भरत रुक जाए महाराजा। दशरथ कहते हैं ठीक है हमारा वचन है कि तुम धरोहर में रख दो और जिस दिन आप मांगोगे उस दिन हम तुम्हें देंगे। दोपहर में मालूम हो जाता है कि अब भरत को राज दिया जाएगा। राम लक्ष्मण जाकर के पिता से प्रार्थना करते हैं कि हम अब 12 साल जंगल में रहेंगे। बात तो बहुत लंबी है, एक एक शब्द के लिए गिनो, एक एक रंगील के लिए गिनो तो एक पन्ना में अगर थोड़ी सी भूमिका बन पाएगी, लेकिन सुनाने की भूमिका ज्यादा है, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है आप लोगों के लिए, कभी पीछी उठ जाए, इसलिए बात वहां की कर रहे हैं कि जब राजा रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं और नंदावत नगर में विश्राम करते हैं, वहां पर एक पत्र आता है और वह पत्र राजा पृथ्वीधर के पास में आता है नंदावत नगर से, राजा अतिवीर का, कि तुम जल्दी चले आओ, भरत के ऊपर चढ़ाई करना है, सारे राजा एकत्र हो गए हैं। पत्र सामने खुलता है, लक्ष्मण पूछते हैं, भाई ये तो बतलाइए कि राजा भरत का अति वीर्य से किस प्रकार से विरोध हुआ। वह धर्मानिया बतलाता है कि हमारे राजा अति वीर्य ने उनके लिए पत्र दिया था कि तुम हमारे अधीन में रहकर अयोध्या का राज करो और हमारी आज्ञा के लिए मानो, अगर हमारी आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो अयोध्या नगर छोड़कर कहीं अन्यत्र समुद्र के किनारे या जंगल में कहीं अपना नगर बसा सकती हो। यह बात जाकर के और राजा भरत से सुना ही रहा था कि राजा शत्रुघ्न ने उस चौकीदार के लिए निकलवा दिया, अभिनय करके निकाल दो और चढ़ाई करके नंदावत नगर घेर लिया है। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई भरत तो अति वीर्य से जीतने में बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमें भरत से छिपकर रहना है, उजागर नहीं होना, अब क्या उपाय, और रक्षा करना जरूरी है, क्या करते हैं कि वहां से चल करके नंदावत नगर में पहुंचकर जिनालय में सीता जी के लिए आज का माता जी के पास में बैठा देते हैं और अपने छिपे हुए विचार के लिए सोचकर और रक्षा के हेतु विचार कर दूसरे विचार करते कि जीवों की कोई हिंसा ना हो, युद्ध में बहुत से जीवों की हिंसा होगी, ऐसे विचार कर श्री रामचंद्र ने नर्तकी का वेश धारण कर लिया। दोनों भाई राजा के महल के पास पहुंचते हैं और वहां पर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। अति वीर्य सामने आते हैं, तब कहते हैं श्री रामचंद्र जी, भाई तुम्हारे लिए यह सलाह किसने दी कि तुम भरत से विरोध करो? राजा कहते तुम क्या अख्तियार है? इनने कहा भाई तुम उनसे विरोध नहीं करोगे तो ठीक है, और विरोध करने के लिए अगर तैयार हो तो बोलो, हम तुम्हारे लिए अभी बंदी कर लेंगे। उनने सोचा जी क्या करेंगी, अपनी तलवार जैसे ही उठाते हैं और रामचंद्र जी ने उनके लिए पकड़ लिया, बंदी बना दिया। सारे राजा थर्रा जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं जाओ, जो भरत की आज्ञा मानेगा, जो भरत की शरण लेगा वह बचेगा, वरना अभी सबके लिए धाराशाही कर दे देंगे। पकड़ ले जाते हैं वो जिनालय में, और सीता जी के सामने जब उनके लिए जोर से उनके केस पकड़कर बांधते हैं तो सीता जी को बहुत दया आ गई। सीता जी ने कहा ये भी कोई राजा है, इतना तो नहीं करो, ढीला कर दो, या इनके लिए बंधन से मुक्त कर दो। राजा अति वीर्य के लिए मन में भाव आया कि देखो इनके प्रति हमारे ऊपर कितनी दया है, कितनी बंधन से मुक्त कर दो और हम क्या सोच रहे हैं, हमें कितना मान है कि हम दूसरे से कहते कि तुम हमें हमारे अधीन बनो। अरे ये संसार तो क्षणभंगुर है, ये तो हमारी बड़ी अज्ञानता है, एक क्षण विचार करते हैं, श्री रामचंद्र जी उनको मुक्त कर देते हैं और वे कहते हैं रामचंद्र जी से, रामचंद्र जी के जाओ अपना राजपाट जिस प्रकार करते थे सो करो, और भरत से अपने भाई के समान प्रीत करो। राजा कहते हैं महाराज अब हम राज नहीं करेंगे, अब तो हम सिपुर का राज करेंगे, इस राज के लिए त्रांजी देते हैं अब, और वे तो मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। रामचंद्र जी उनके पुत्र विजय के लिए राज देते हैं, राजगद्दी सुपृत करते हैं, और विजय अपनी बड़ी बहन के लिए लक्ष्मण को प्रणाम देते हैं, और छोटी बहन को लेकर भरत के पास जाते हैं। देखिए एक क्षण दोनों तरफ से राजाओं का, बड़े बड़े राजाओं का सहयोग हो रहा था, युद्ध का मैदान झल रहा था, सूरवीर अपने अपनी संभाल कर रहे थे, हाथी घोड़ा रथ तैयार हो रहे थे, कितनी हिंसा हो जाती, और एक तरफ एक क्षण में क्या हो जाता है। आदमी कहते कि उनने नृत्यकी का भेद धारण कर लिया, आप विचार जो कीजिए नृत्यिका का भेद धारण करने से क्या हुआ, कितनी हिंसा बढ़ गई, दोनों तरफ की कितनी फौज मारी जाती, क्या होता। ऐसे वे महापुरुष और भरत के पास जाकर वह दूसरी बहन प्रणाता है और उनके अधीन होकर नमस्कार करता है। भरत को जब मालूम होती है कि अति वीर्य तो मुनि हो गए, भरत अपने सादे देश में अस्तपे अश्वार होकर साथियों के साथ मुनिराज का पूछते जाते हैं किस जंगल में मुनिराज विराजमान है, अति वीर्य मुनिराज कहाँ है। एक क्षण तो उनके ऊपर फौज चढ़ा करके आए थे, सारा नगर घेर लिया था, एक क्षण के बाद में क्या हो गया। और मुनिराज के लिए तलाश करके जा करके उनके चरणों में गिर जाते हैं वे भरत राजा। ऐसा यह जिन धर्म हमारा ऐसी है दिगंबरी दीक्षा, ऐसे भाव हम अपने संसार रूपी सुखों के पीछे भाई से भाई एक एक फुट जगह पर लड़ते हैं, केस मुकदमा चलते हैं, सालों से बैर बांधते हैं, अनंतान मंदी कसाय अपने सिर पर बोझ डाल लेते हैं, पर उससे क्या होगा। इस भाव में भी बिगड़े और अगले भाव में भी बिगड़े और सारी संपत्ति सोनो चांदी हीरा रत्न मट्टी के माफक पड़े रह जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, पर मुफ्त में अनंतान मंदी कसाय बांध कर जाते हैं। ऐसा यह हमारा श्रावक कुल धर्म, इसका हम विचार नहीं करते। हम इस श्रावक कुल का विचार करें तो इस भव से हम अपना उत्थान कर सकते हैं।
मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंता दीमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि किस तरह हम अपने शेष जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ विचार करें। आज भी एक अवसर हमारे पास है कि हम बैठकर इस बात पर विचार करें कि जो जीवन शेष है उसे क्या मैं और बेहतर ढंग से जी सकता हूँ। असल में जैसा जीवन हम जीते हैं वो हमारी मजबूरी या नियति नहीं होता है, वो हमारी अपनी चॉइस है। लगता जरूर ऐसा है कि हम ऐसा ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, या क्या करें, हम लिखवाई के ऐसा लाए थे तो अब वैसा ही भोगना पड़ेगा। नहीं, इतना ही नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। हम चाहें तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसमें संशोधन और संवर्धन भी कर सकते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह से रहना है। देखें अगर तो दो तरह से लोग अपना जीवन जीते हैं। एक ऐसा विचार करके जीते हैं कि जैसे वे इस सारी सृष्टि के मालिक हैं। एकदम कोई ऐसा तो नहीं कहता कि मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, लेकिन जब जब भी मैं अपने परिवार का मालिक या कि अपने समाज का मालिक बनने की कोशिश करता हूं तो अल्टीमेटली मेरे मन में होता वही है कि मैं सबके ऊपर रहूं, मेरी होल्ड सबके ऊपर रहे, मेरी ग्रिप में सब रहें, मेरे अनुसार सब चलें। हम जब अपने बेटे को अपने अनुसार चलाने की शुरुआत करते हैं उसी समय मालूम पड़ने लगता है कि हम इसी भाव से भरे हुए हैं कि सब सारा संसार सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले, हम दुनिया के केंद्र में रहें। ऐसा जो एक सेल्फ सेंटर्ड हो जाने का हमारा विचार है, वैसे विचार से भी हम अपना जीवन जीते हैं। और एक और दूसरा विचार है कि नहीं, मैं भी और लोगों की तरह यहां अपना जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन जीने से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और दूसरे लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी किसी के भी जीवन से तकलीफ ना पहुंचे। एक जीवन ऐसा भी जिया जा सकता है, लेकिन उसका अपन को ज्यादा आइडिया नहीं है। उस तरह भी जिया जा सकता है, इसका बहुत कम अपने पास विचार है। अपने पास ये विचार बहुत प्रबल है और बहुत संस्कार भी अपना इसका है कि हम जहां भी रहें वहां पर हम डोमिनेट करें, वहां पर हमारा ही वर्चस्व हो, हमारे अनुसार ही सब कुछ चले। और मैं सोचता हूं कि हम सबके अशांति का एक बड़ा कारण ये भी है, जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं रख पाए और सारी दुनिया को अपने काबू में रखने की कोशिश करे, बताइएगा वो कभी सुखी हो पाएगा? बहुत सीधी सी चीज है, लेकिन ऐसा अपने मन में विचार है। अपन भी ऐसे ही विचारों से कभी कभी बहुत घिर जाते हैं, अपन भी ऐसा ही चाहने लगते हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसा परिवर्तन हम कर सकते हैं? यही कि जैसे मैं जीता हूं ऐसे ही और लोग भी हैं, वे भी अपना जीवन जीते हैं, और जैसा मैं ठीक ढंग से अपना जीवन जीना चाहता हूं ऐसे ही और लोग भी हैं, वे भी तो अपना ठीक ढंग से जीवन जीना चाहते हैं। मैं किसी के जीवन में बाधक न बनूं, एक सोच ऐसा भी है। ये सोच ऐसा है जैसे कि समुद्र में एक बूंद है, उसकी अपनी भी एग्जिस्टेंस है, उसका अपना भी स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन अगर वो छोटी सी बूंद अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सुरक्षा करना चाहे तो वो कहीं बाहर पड़े रह के नहीं कर सकती, वो तो जरा धूप निकलेगी और सूख जाएगी। लेकिन अगर वो पूरे समुद्र में और बूंद की तरह अपना अस्तित्व बनाए रख करके भी रही आवे तो पूरा समुद्र उसके लिए संरक्षण देता है। एक छोटी सी यूनिट भी अगर यहां पर है तो उसके लिए पूरी सृष्टि का संरक्षण है। जैसे कि कोई बहुत बड़ी मशीन हो और उसमें एक छोटा सा पुर्जा हो, अपन सोचे कि इसका क्या महत्व है इस छोटे से पुर्जे का, या कि वो छोटा पुर्जा सोचे कि मेरा ही सब कुछ महत्व है, मेरे बिना तो कुछ नहीं चलेगा। तो दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। उस छोटे के पुर्जे के बिना भी ये ठीक है कि मशीन में मुश्किल आ जाएगी, लेकिन वो छोटा सा पुर्जा ही सब कुछ नहीं है एक चीज, और उस छोटे से पुर्जे को वहां से अलग कर दो तब भी संभव है कि मशीन ठप हो सकती है। दोनों ही स्थितियां हैं। हम यहां पर अपनी तरह से जीवन जी रहे हैं, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी भी है, और ये जो पूरी संरचना दिखाई पड़ती है, जो सारा लोक है जिसमें सब लोग जी रहे हैं, वे भी अपने ढंग से जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे मेरे पुण्य पाप का खा रहे हों और मेरे अनुसार वे सांस ले रहे हों, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अहंकार हम अपना देखें कि कैसा हमारा अहंकार है जिसके चलते और हम अपने जीवन को अपने हाथ से तहस नहस कर देते हैं, अपने जीवन में अशांति खुद हम ला लेते हैं। हम इन दिनों अगर देखें तो हमारा अपना व्यवहार बहुत एग्रेसिव है, होना चाहिए था रिसेप्टिव, होना चाहिए था ग्राहक, कि सब तरफ से हमें जो श्रेष्ठ है वो हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए तो चाहिए रिसेप्टिविटी, कुछ ग्रहण करने के लिए तो बहुत रिसेप्टिविटी चाहिए, और रिसेप्टिविटी तो आती है जबकि मैं अपने को कुछ नहीं मानूं, और अगर मैं अपने को सब कुछ मान करके यहां पर जीऊं तो क्या होगा, मेरे पास जो है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा और नया कुछ आने वाला नहीं है। पर क्या करें, हमने ऐसा जीवन बना लिया है अपना। गौर से देखना आप कैसे, एक व्यक्ति बड़े प्यारे, बड़ी बढ़िया तो बात करते, वो ऑफिस में मिल जाते तो इतने प्यार से बोलते कि शायद अपने बहुत उनसे बात करने पर लगता था कि बहुत निकट के हैं, बहुत घनिष्ठता है इनसे, सबका सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते थे वो। तो उनके जो मित्र थे जो उनसे हमेशा ऑफिस में मिला करते थे, उनका मन हुआ कि एक आध बार घर जाकर के भी मिलें और बात करें इनसे, बड़ा अच्छा रहेगा, ये बड़े बढ़िया आदमी लगते हैं। तो उनके एक दिन घर गए, घर गए तो जैसे ही दरवाजा खुलाया तो जो उनके जिनसे मिलने गए थे वो बड़े झुंझलाए से बाहर आए। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी जिसको मैंने ऑफिस में देखा और इतने बड़े गर्म जोशी से मिलते हैं और ये तो बड़े सहज रूप से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आओ। गए भीतर तो सोचा कि शायद कोई मुश्किल होगी, घर में कोई परेशानी होगी, इसलिए जरा तनाव में हैं, लेकिन देखा तो उनका चेहरा तो बिल्कुल तना हुआ था और उनकी आवाज बावाज भी वैसी नहीं थी जैसी ऑफिस में रहती थी। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बात क्या है। फिर भी और थोड़ा वेट किया, बैठे उनके साथ में, फिर अचानक जो है उनका बेटा आया। तो जैसे ही बेटा आया तो उनने उसको बेटे की तरफ ऐसे हिराकत की नजर से देखा। उनको और आश्चर्य हुआ कि वो तो सोच रहे थे कि बेटे के सिर पे हाथ फेरेंगे, गोद में बिठा लेंगे, परिचय करवाएंगे कि ये देखो हमारे ऑफिस के हैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं, बेटे से तो बेटा कुछ बोले उसके पहले ही उन्होंने जो है दूसरी तरफ मुंह कर लिया और बेटा चुपचाप बाहर निकल गया। जीवन साथी आई तो जीवन साथी के साथ भी इनने ढंग से बात नहीं करी। नौकर आया, नौकर को तो ऐसे देखा जैसे किसी कीड़े मकोड़े को देखते हो। हाँ, तो इनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये वही आदमी है, इतना प्यारा आदमी और यहां कैसा इसका व्यवहार है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, बैठे, कोई बात नहीं, जाने का समय हुआ तो वापस जाने लगे, तो दरवाजे पे आके और कहा कि एक बात पूछना थी। बोले जरा धीरे बोलो, ये घर है। कहने मतलब? बोले हाँ, जो भी कहना हो जरा, और थोड़ा घर से बाहर चलते हैं, फिर कहना वहां पर। तो घर से बाहर ले गए उनको और कहने लगे बोलो क्या कहना है। बोले कुछ नहीं कहना, मुझे यही कहना कि तुम्हारा घर में तो ऐसा व्यवहार है, कुछ समझ में नहीं आया हमारा। बोले सुनो, घर में ऐसे ही रहना पड़ता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। बोले कैसे? बोले अगर मैं घर में बेटे की तरफ मुस्कुरा के देख लूं ना तो वो मेरे पॉकेट में हाथ डालता, कहता कि पापा जेब खर्च। तो मुझे जरा ऐसे ही बिहेव करना पड़ता है। और जीवन साथी की तरफ अगर जरा ढंग से देख लूं और मुस्कुरा दूं तो अब भी वो कहेंगे कि आज शाम को घुमाने ले चलना और साड़ी वाड़ी परचेस कर देना। तो बोले इनसे भी ऐसे ही जरा ढंग से रहना पड़ता है। और नौकर, नौकर को तो अगर ऐसे नहीं देखो तो वो तो कहेगा जनाब बहुत दिन हो गए, पगार कुछ बढ़ाई जाए, अब खर्चा नहीं पड़ता है, तो वो भी ऐसी बात करने लगता है। इसलिए घर में तो हम सबके साथ ऐसे ही रहते हैं, बताइएगा। इस तरह तो हम अपना जीवन इस अहंकार में कि ये सारे घर के लोग मेरे अनुसार चलें, मेरे ऊपर हावी ना हो जाएं, मैं अपने स्वभाव को कैसा बना लेता हूं, ये जरा सा विचार करने की बात है। और फिर ये संस्कार हमारे भीतर बढ़ता चला जाता है तो फिर हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी हमारे स्वभाव में वही चीजें रहती हैं। और इतना ही क्यों, हमारे अंदर जो संस्कार आगे के लिए पड़ जाता है वो भी फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। इतने थोड़े से के पीछे कि बेटा चार पैसे ना मांग ले और जीवन साथी कोई और चीज ना मांग ले और नौकर की पगार ना बढ़ानी पड़े, सिर्फ इतने दो पैसे के लिए मैं अपने पूरे स्वभाव को, जो मेरी अपनी मृदुता है, जो मेरी अपनी कोमलता है, जो मेरी अपनी जेंटिलनेस है, मैं उस सबको दांव पे लगा देता हूं। आखिर आखिर बात क्या है? बात वही है, सिर्फ मेरा अपना अहंकार। इस चीज पे हमें गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस अहंकार के चलते और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हों। हालांकि कोई हमारे सामने अहंकार, असल में जो एक सबके साथ मिलके जीने की स्टाइल है वो हम भूल गए हैं, और जो अपने आप को ऊंचा उठाने की इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीवन को भी परिष्कृत करना वो हम भूल गए हैं। और कोई वजह नहीं है ना, हम अपने जीवन को ठीक ठीक बनाने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ उतना ही ठीक बनाना चाहते हैं जितने को लोग ठीक माने, हम उतने ही सच्चे होना चाहते हैं जिसमें कि लोग हमें सच्चा माने, सचमुच हम सच्चाई के रास्ते पर हैं कि नहीं इसकी हमें चिंता नहीं है। हमें इस बात का जरूर विचार करना चाहिए। मैं आपको एक और घटना सुनाऊंगा जो मेरे जीवन में मुझे बहुत कीमती घटना मालूम पड़ती है, पर उसके पहले और थोड़ी सी बात इस अहंकार पर कर दें कि क्या इस अहंकार को मैं किसी तरह कम कर सकता हूं कि नहीं। ये तो अपन ने समझ लिया कि मेरे भीतर ये सारी चीजें हैं, मेरे भीतर ऐसे विचार हैं, मैं अपने थोड़े थोड़े से स्वार्थों के पीछे, धन पैसे के पीछे और अपने स्वभाव की जो विनय है, अपने स्वभाव की जो कोमलता है, जो जेंटिलनेस है, उसको खत्म कर देता हूं, पर उसको मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। अब वो जो है वो भी अपने पास होना चाहिए। तीन ही तरह से हम जीते हैं, हमारे पास मन है, हमारे पास वचन है, हमारे पास शरीर है। शरीर से हम क्रियाएं करते हैं, वाणी से हम बोलते हैं और अपने संबंध स्थापित करते हैं, मन से हम अपने और दूसरे के बारे में विचार करते हैं। क्या हमारे मन की विनय हम सीख सकते हैं? मन में श्रेष्ठ विचार होना, यही मन की विनय है। हम अपने जीवन में अधिक से अधिक समय श्रेष्ठ विचारों के लिए दें, क्या ऐसा संभव है? और श्रेष्ठ विचार सब समझते हैं, अहंकार तो श्रेष्ठ विचार नहीं है, गुस्सा करना तो श्रेष्ठ विचार नहीं है, दूसरे पर दया करना, करुणा करना, सबसे प्रेम रखना, यही श्रेष्ठ विचार है। ऐसा श्रेष्ठ विचार मेरे अंदर हमेशा बना रहे, क्या इसके लिए कोई प्रयत्न हम कर सकते हैं? दिन भर में जब जब भी याद आ जाए, जब जब भी मैं अपने अंदर बुरे विचार आ जाए, उस समय मैं ध्यान कर लूं कि क्या इस विचार से मेरा कल्याण होगा, इस विचार से मेरा उत्थान होगा? नहीं होगा तो फिर मैं उस बुरे विचार को स्थगित करके उसकी जगह पर क्या अच्छा विचार नहीं ला सकता हूं? ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विनयवान होगा वही अपने आप को परिवर्तित कर सकेगा।
अहंकार के चलते तो कोई किसी के कहने पर या कि स्वयं भी वैसा विचार ही नहीं कर पाता है। भैया जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मान चुका है उसके अब श्रेष्ठ होने का कोई उपाय ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा मान चुका है उसके बड़े बनने का कोई उपाय ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने को गुरु मान चुका है अब उसके जीवन में किसी गुरु की कृपा का कोई सवाल ही नहीं है। जिसने अपने को शिष्य माना है उसके जीवन में तो गुरु की कृपा बरस सकती है। जिसने अपने जीवन में छोटा बनना सीखा है वो व्यक्ति तो बड़ा बनने के लिए उसके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। जो आपसे झुक कर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा। कहते तो यही है कि बड़े की पहचान ही ये है कि जो आपसे झुक कर मिला होगा। देखिए झुक के मिला होगा, अगर हाइट में बड़ा होगा तब भी झुक के ही मिलना पड़ेगा, और अगर वाकई में मन में कोई हाइट बड़ी है तब भी वो झुक के ही मिलेगा। पर अकड़ तो जो है वो मुर्दे की निशानी है। एक जगह लिखा है कि डूबना क्या जाने, जिसके पास थोड़ी सी भी चेतना है वो डूब सकता है पानी में, बाकी तो मुर्दा ही पानी में बहता जाता है क्योंकि अकड़ा रहता, डूब नहीं सकता वो। ऐसा लिखा है एक जगह। हमें इस बात पे विचार करना चाहिए, जब जब भी हमारे भीतर खोटा विचार आ जाए उसको हम अच्छे विचार में परिवर्तित करने का प्रयास करें। वाणी, वाणी की मधुरता ही वाणी की विनय है। हम किसी से भी बात करें, हमारे जब हम बहुत छोटे थे एक छुलक जी आए थे, छुलक दया सागर जी, वो जैन नहीं थे, उन्होंने इंग्लिश में एमए करा था और ब्राह्मण थे वो, पर छुलक बने थे और उनको थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान था, तो उस हिसाब से उनने अपने जीवन के कल्याण के लिए, उनकी 3-4 साल की आयु शेष रह गई थी तो सब सर्विस सर्विस छोड़ करके और छुलक बन गए थे। मुझे याद है फिर 1971 में उनकी समाधि भी हो गई थी, 1968 में मुझे उनका थोड़ा सा सानिध्य मिला था, तब का मुझे याद है। वो लोगों को लिख करके देते थे, कुछ वचन लिख के देते थे कि ऐसा करना ऐसा नहीं, तो हमने भी उनसे लिखवाया था। उनकी एक मुट्ठी को बांधे आया हूं मैं, हाथ पसारे जाऊंगा, एक कविता थी तो वो छपी, तो उस पे हमने लिखवाया। उन्होंने क्या लिखा वो मुझे अभी भी याद है, जो लिख के दिया था कि अच्छा बोलने के लिए हां, प्रेम से बोलने के लिए हां, लेकिन बुरा बोलने के लिए ना, घृणा से बोलने के लिए ना। बस इतने याद रखना। उसमें से मुझे दो ही चीजें याद रहीं कि प्रेम से बोलने का मन हो तो हां बोल लो, और घृणा से बोलने का मन हो कृपा करके बाद में देखेंगे, कल बोलेंगे। घृणा से बोलेंगे तो कल बोलेंगे, आज तो नहीं बोलेंगे, और फिर कल तो कभी नहीं आता। क्यों नहीं हम ऐसा निश्चय कर लेते हैं मन में कि जब जब भी मैं अपनी इस वाणी का, जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, जिससे मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं, जिससे मैं अपने भीतर जो फील कर रहा हूं वो दूसरे को बता सकता हूं, दूसरे की फीलिंग को उसकी वाणी से समझ सकता हूं, उस वाणी का मैं सदुपयोग करूं, उस वाणी की विनय बनी रहे मेरे पास, मैं वचन ऐसे बोलूं जिससे कि दूसरे को पीड़ा ना हो, कठोरता ना आवे। मेरे मन में कठोरता आए बिना वाणी में कठोरता आ ही नहीं सकती। इसलिए अगर हम वाणी की विनय भी सीख ले तो सीख सकते हैं। और शरीर की विनय क्या है? श्रेष्ठ कार्य करना शरीर की विनय है। भगवान की पूजा करना शरीर की विनय है। किसी को हाथ जोड़ लेना यह भी शरीर की विनय है। किसी को धक्का नहीं देना बल्कि सहारा देकर के खड़ा कर देना, यह शरीर की विनय है। और क्या करना है? किसी को मेरे इस क्रियाओं के द्वारा तकलीफ ना पहुंचे, इस बात का मैंने अगर ध्यान रख लिया, पहुंच जाती है। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं पहुंचती, पहुंच जाती है, सब जानते हैं, लेकिन मैं इस बात का विचार तो रखूं कम से कम कि मेरे शरीर की क्रिया से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, पहुंचे भी तो मैं उसको समेट लूं। मैं कम से कम अपने जीवन को ऐसा जीऊं जिससे कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह हम अपने मन, वाणी और शरीर तीनों को एक दिशा देके थोड़ी सी स्टाइल उनकी चेंज करके, क्योंकि तीनों हमारे पास हैं, मन है, हम फ्री हैं, हम जैसा विचार करना चाहें, वाणी है, हम जैसी बोलना चाहें, शरीर है, हम जैसा करना चाहें, वो हमारी अपनी च्वाइस है, कोई हमारे ऊपर अंकुश तो है नहीं, और कोई अंकुश लगा भी देता है तो हम माने या नहीं माने, लेकिन क्यों नहीं हम अपने ऊपर इन तीनों पर अंकुश अपने हाथ से रख लें और इन सब की जो विनय है उसको मेंटेन करें, क्योंकि वो हमारा नेचर है, वो हमारा स्वभाव है, और उसमें जो जो गड़बड़ियां आई हैं उन सबको समय रहते हम अलग कर सकें। वो जो मैं आपसे घटना कहना चाहता हूँ बस वही घटना और कहूँ, फिर आपको और भी बहुत से काम हैं। एक बहुत गरीब आदमी था। इस घटना से हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा कैसा स्वभाव तो हो गया है और कैसा स्वभाव हमें अपना थोड़ा बदल लेना चाहिए, और कोई विशेष बात नहीं है। मैं तो आपसे इतने दिन से और शायद इसी तरह बैठ करके बात करता हूँ, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ना मैं किसी नई चीज़ का दावा कर रहा हूँ, जो है वो हम सबका अपना है और उसमें ही हम थोड़े से परिवर्तन करके और उसको ठीक कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे अपने आचार्यों ने हम पे कृपा करके और हमारे अपने कल्याण के लिए बहुत अच्छी उम्दा बातें हमें कही हैं, बस ये है कि उसको हम अपने जीवन में समझें और समझ करके अपने जीवन पर लागू करके देखें। दूसरे के जीवन पर लागू करके देखने का मन तो बहुत होता है, दूसरे से अपेक्षा भी बहुत होती कि इसको इतना बढ़िया होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, दूसरे को यों करना चाहिए यों नहीं करना चाहिए, ऐसा तो बहुत मन में विचार आता, लेकिन ये भी तो आए कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, बस खत्म। दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि कोई कहे कि आपको ऐसा करना चाहिए। मुझे बहुत बहुत अजीब लगता है जब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स बना देता है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, ये हमने निर्धारित किया है, तो हमको लगता है कि इसका मतलब है कि हम कितने अज्ञानी हैं, अपना कल्याण खुद नहीं करना चाह रहे और दूसरा कोई कह रहा है, हमें कहना पड़ रहा है। हमको एक बार भर माँ ने कहा था कि क्यों मंदिर गए कि नहीं, उस दिन फिर हम नहीं गए थे, हाँ हमें याद है, जिस दिन उनने पूछ लिया था कि मंदिर गए कि नहीं गए, तो उस दिन हम नहीं गए थे, और उनके पूछने के बाद तो और नहीं गए हम। माँ ने फिर कहा कि तू इतना जिद्दी क्यों है, मैंने जब तेरे से पूछा तो नहीं गया था तो बोलता कि नहीं गया, और तो मैंने कहा मुझे उस बात की बिल्कुल वो नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि अपने बेटे पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे इस बात का दुख है, मैं चले जाया करूंगा, आप मत कहा करिएगा, मैं खुद ही जाऊंगा। हाँ जिस दिन नहीं जाऊं, मैं अभी तो गई नहीं था मंदिर, मैं जाता मंदिर, लेकिन आपने क्यों बीच में टोक दिया। उसके बाद से उन्होंने कभी, और वही आदत मुझे ठीक लगता है कि मैं अगर अपने कल्याण के लिए चिंतित हूं तो ठीक है, और जब मैं ही चिंतित नहीं हूं और कोई मेरे लिए चिंता करके और चार बातें कहे भी तो मैं मानूंगा नहीं, मैं तो थोप दी जाएंगी मेरे ऊपर, तो दो चार दिन निभा लूंगा, फिर उसके बाद मैं छोड़ छाड़ के झटकार के एक तरफ खड़ा दिखूंगा। हाँ ऐसा देखा मैंने, ये जो बाहर से लगाया गया अनुशासन या अंकुश है वो जीवन को ऊंचा नहीं उठाता। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, अपने आप इस चीज का विचार करें और अपने मन पर खुद अंकुश लगाएं, मुझे ये करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं पूछें, ऐसा पूछें कि इसके करने से मेरा कल्याण होता है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं करता हूं, और ऐसा करने से मेरा अहित है तो फिर मैं क्यों करता हूं, बस इतना ही। और अपने आप से पूछ ले, और किसी से कहीं पूछने जाने की आवश्यकता नहीं। वो एक छोटी सी घटना, उसी घटना के चलते चलते संभव है कि हमें कोई बात समझ में आ जाए। वो बहुत गरीब आदमी था और शहर आया था, और शहर इसलिए आया था कि कोई नौकरी मिल जाए, वो भीख मांगने नहीं आया था शहर। एक दुकान पे जाकर के उसने उसके मालिक से कहा कि मालिक कोई काम मिल जाएगा, और अगर कोई आज के समय में बड़ा मुश्किल समय है, अगर कोई किसी से हाथ जोड़ के बड़ी दीनहीनता से अपनी विनय प्रकट करे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फंस गया ये, ऐसा लगने लगता, अच्छा आदमी फंसा, अब निचो इसको, क्या कहते हैं इसको अपनी भाषा में बुंदेल, जो भी आप कहते हो, ऐसा मन में आ जाता, अपने भावों का भी विचार करते रहना कि ऐसा आ जाता कि नहीं, कोई थोड़ा सा झुके तो अपन को तो और झुकना चाहिए, लेकिन अपन उसके सामने ऐसे अकड़ते हैं कि हां बच्चू झुके रहो हमारे सामने, ऐसे ही रहो। तो अच्छा ये भी चुप हो गया, ठीक नहीं मैं रुका हूं। आ गया, आ गया नहीं, आवाज आ गई। अपन बात कर रहे थे कि एक गरीब आदमी जब किसी सेठ और बड़े आदमी के दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी विनय प्रकट करता है, दीनहीन होकर के कुछ मांगता है, तब उस सेठ के मन में क्या आ जाता है? वैसे भी वो जब गद्दी पर बैठा है तो अपने आप को फील तो करता है कि आई एम समथिंग, बाकी लोगों को बिल्कुल ऐसे मनुष्य होने के बाद भी कीड़े मकोड़े तक को जो अच्छे लोग हैं वे हिराकत की नजर से नहीं देखते हैं, लेकिन देखो तो मनुष्य मनुष्य को कैसे देखता है, ये उसका सिर्फ अहंकार है और कुछ नहीं। हो सकता है जिस चींटी पर आपका पैर पड़ा है वो चींटी आपके पैर के नीचे मर करके और देवायु का बंद करके और देवों में उत्पन्न होके वहां से आकर के और कमोक्ष चली जाए और आप अपने अहंकार में और पैर धरते चले जा रहे हैं अकड़ में, संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव यहां पर कमजोर है, कोई जीव यहां पर क्षुद्र है, नहीं, जो जीव अपने में जितनी क्षुद्रताओं को संग्रह करके रखे है वो उतना क्षुद्र है, चाहे वो मनुष्य भी क्यों ना। तो वो गरीब आदमी तो विनय कर रहा है और सेठ जी मालूम क्या कहते हैं, क्या करेगा तू, झाड़ू लगाएगा क्या? झाड़ू, देखो मेरे ख्याल से तो हर आदमी दूसरे आदमी से अपने घर में और दुकान पे झाड़ू ही लगवाना चाहता, मेरे ख्याल से तो लगता है कई बार। देखो ना सेठ जी ने उससे सबसे पहले यही तो कहा कि क्या करेगा तू, दुकान पे झाड़ू लगाएगा क्या? तो इसके बाद भी वो क्या बोलता है, मालिक अगर वो भी काम आप मुझे सौंपेंगे तो वो भी मैं करूंगा, तो ठीक है फिर तू झाड़ू ही लगाना मेरे दुकान पर। उसने कहा मंजूर है मालिक, आप जो कहेंगे। वो फिर भी विनयवान है और सेठ जी फिर भी अकड़ते चले जा रहे हैं, जबकि दोनों मनुष्य हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर क्या करें, अब विचार का तो फर्क, बहुत बड़ा फर्क है, दो एक जैसे दिखने वाले लोगों में भी विचारों में बहुत फर्क हो सकता है और होता ही है। मैंने आपसे कहा कि दो ही तरह के लोग हैं, अलग अलग दो तरह के विचारों में जीते हैं, एक अहंकार में जीते हैं, एक विनयपूर्वक जीवन जी लेते हैं, दोनों जीते हैं और दोनों के उदाहरण अपने सामने हैं। तो अब सेठ जी क्या पूछते हैं, क्या लेगा महीने भर का? वो बड़े विनय से कहता है कि सेठ जी दो जो दे देंगे वो ही लेंगे। अब तो सेठ जी बहुत खुश हैं कि क्या आदमी मिला है, हैं? ऐसा आदमी तो देखने में नहीं आया, अब ले लो इससे जितना काम लेना चाहो, जबकि होना ये चाहिए था उस समय मन में विचार ही आ जाना चाहिए था कि कितना दुखी व्यक्ति है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आता है ये विचार कि मुझे इसकी इस कमजोरी का, मुझे इसकी इस दरिद्रता का, मुझे इसकी इस निर्बलता का जितना बन सके उतना लाभ ले लेना चाहिए। दूसरे की अज्ञानता का लाभ लेने वाले ज्ञानी जनों को मैंने बहुत निकट से देखा है, दूसरे की सरलता का लाभ उठाने वाले कठिन लोगों को मैंने बहुत निकट से देखा है, आपने भी देखा होगा, और वो कोई और नहीं है, अपन ही है, और कोई नहीं है, हम ही तो हैं। हम ही कभी कभी जो दूसरे की सरलता का लाभ उठाते हैं, दूसरे की अज्ञानता का, दूसरे की निर्बलता का, दूसरे की निर्धनता का कैसे लाभ उठाते हैं, उन क्षणों में हम भी तो अज्ञानी और कठोर नहीं हो जाते होंगे, हो ही जाते हैं। और सेठ जी ने कहा कि सुनो कुछ नहीं मिलेगा झाड़ू लगाने का, सिर्फ 2 जून का भोजन मिलेगा और महीने में एक आध जोड़ी कपड़े, इतना ही मिलेगा। उसने कहा मालिक मंजूर है, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, आप जो दे देंगे मैंने तो यही कहा, और काम शुरू हो गया। वो झाड़ू लगाने लगा दुकान पर। एक दिन ऐसा हुआ, वो तो अपनी विनय से अपना काम करता था, एक दिन ऐसा हुआ कि कागज बटोरते बटोरते और बाहर उसने कुछ कागज इकट्ठे करके उनको पढ़ना शुरू कर दिया, दुकान के ही कागज थे। तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इधर आओ, क्या मालिक तू पढ़ना भी जानता है? हाँ मालिक, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं। थोड़ा थोड़ा कि ठीक से पढ़ लेता हूं मालिक, जितना आवश्यक है उतना। क्या दुकान की ये चिट्ठे बना सकते हो? हाँ मालिक, आपकी कृपा होगी तो बना दूंगा। हाँ तो दुकान की चिट्ठे ही बनाया करें, लेकिन ये नहीं कहा कि इसका भी हम तुम्हें पैसा देंगे। बस पैसा तो वही 2 जून का भोजन, और क्यों, क्या आवश्यकता है? गरीब के जान थोड़ी होती है, जान तो सिर्फ जिनके पास पैसा है उनके पास होती है, प्राण तो उन्हीं के पास होते हैं। निर्बल के पास, अज्ञानी के पास प्राण थोड़ी होते, ऐसा लगता है अपन को। तो उन्होंने भी ऐसे ही करा और वो अब दुकान में पर्चे भी बनाने लगा, झाड़ू भी लगाता था, पर्चे भी बनाता था। मैं आपको ज्यादा ना कहूं, उस व्यक्ति ने अपनी विनय के चलते सेठ का मन जीत लिया, लेकिन सेठ इसके बाद भी उसके प्रति पोलाइट नहीं हुआ, उसके प्रति जरा भी सहिष्णु या कि जरा भी उसने सज्जनता का व्यवहार नहीं किया, हमेशा उससे काम लेता रहा। लेकिन इतना जरूर है कि उसका अपनी विनय से और इजाफा होता रहा उसकी अपनी योग्यता में, और वो एक दिन हेड क्लर्क बन गया सेठ का, हेड मुनीम जिसको कहते हैं, बड़ा मुनीम हो गया दुकान में जो झाड़ू लगाता था। लेकिन मजा यह है कि अगर कोई विनयवान इस तरह तरक्की करके ऊंचे पहुंचे तो बाकी देखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, वे भी मनुष्य हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता, हम ही हैं उनमें से और कोई दूसरा नहीं है। इन्हीं में से किसी व्यक्ति को बुला करके और यहां पर अगर उसके माथे पर मैं पीछी धर दूं तो बाकी की जान सूख जाएगी यहीं पर और कहीं नहीं। ये इन व्यक्ति को इतना सम्मान, उधर बिठा लिया, पीछे रख दी, वाह भैया हमने तो सोचा था कि धर्म के स्थान पर तो थोड़ा पक्षपात नहीं होता होगा, यहां भी वही सब। इस अच्छा और खुद का हुआ होता तो बिल्कुल पक्षपात नहीं होता। ये अपने अपने भावों को पढ़ो, सीखें, अपन सीख रहे हैं अपन, और कुछ नहीं, हम किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत समझना आप, अपन सीख रहे हैं कि देखो अपन ऐसे ही तो हैं और इसमें ही तो अपन को बदलाव लानी है, और क्या करना, ऐसा जल्दी से आ जाता, संस्कार है, ऐसे ही सिखाया गया अपने को, अपन ने ऐसा सीखा ही नहीं अनादिकाल से कि अगर किसी का सम्मान हो रहा है तो ऐसा लगे जैसे कि हां श्रेष्ठताओं का सम्मान हो रहा, मेरा सम्मान, और वहीं बैठे बैठे मुझे अच्छा लगने लगे। उन सबको उसका हेड क्लर्क बन जाना सुहाया नहीं, जो और लोग दुकान में काम करते थे अब उन्होंने सेठ जी के कान भरना शुरू किए। ईर्ष्या क्या नहीं करवा लेती, सब करवा लेती है। जब जॉर्ज वर्नाशा से पूछा गया कि सेकंड वर्ल्ड वार का क्या कॉज था, तो उन्होंने कहा देयर आर 3 causes, 3 कारण थे। उन्होंने कहा कौन कौन से, फर्स्ट द जेलसी, सेकंड इज द जेलसी, थर्ड द जेलसी। अरे 3 कारण बताने जा रहे थे आप, 3 कौन से कारण? कहते ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्ष्या, 3 कारण। कारण एक ही है, अगर कोई युद्ध हुआ है तो उसका कारण क्या है, वो कहते हैं कि 3 बार कहूंगा मैं लेकिन एक ही कारण है। और ऐसा ही वहां हुआ, सेठ जी के कान भरे, सेठ जी को जितना अपने मुनीम पर विश्वास था वो थोड़ा सा कम हुआ, होता ही है, संस्कार है। अपन किसी की बुराई सुनकर के जल्दी से मान लेते हैं कोई अच्छा है, ऐसा कोई अपन से कहे हाँ होगा ठीक है, नहीं कह देते कोई के बारे में अपन कहें कि तुमने नहीं सुनी उनको, अरे बहुत अच्छे आदमी, हाँ अभी तुम मिले हैं, तुमने देखो नहीं, कहा देखो कहा है, अभी देखो ऐसा कह देंगे अपन। और कोई कोई अगर ये कहे कि तुमने फलाने की सुनी उनकी ऐसी ऐसी, अरे तुम अभी हम मालूम पड़ी, हम तो पहले जानती उनको भी है ही ऐसा, ये नहीं गुनों के हैं भी, ऐसा बहुत जल्दी मन में आ जाएगा। दूसरे का बुरा सुनने पर बड़ा दिल को संतोष मिलता है, हाँ निंदा में बहुत रस आता है, दूसरे की प्रशंसा में तो अपनी तोहीन मालूम पड़ती है। ये यही तो अहंकारी का लक्षण है, अपने भीतर के अहंकार का लक्षण है ये। अब इसको जरा सा निकालना है अपने को, और कुछ नहीं। जब अपन दूसरे की प्रशंसा सुनने में और अच्छा अनुभव करें तो समझना कि अब हम बहुत प्यारे लोग हो गए, बहुत अच्छे हो गए, हाँ ये क्राइटेरिया है। और अपनी प्रशंसा सुनकर के लगे कि अरे काहे को कर रहे हो, मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं, उनकी करो ना प्रशंसा, अपन कहां लगते हैं, ऐसा मन में भाव अपने आप आ जाए, मेरे के कहने से नहीं, अपने आप आ जाए, तो समझना कि अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है लाइफ में। और प्रशंसा सुन के लगे कि है ही अपन ऐसे, और थोड़ी अभी तो तुमने बहुत कम कही है, अभी तो और मेरे अंदर तो बहुत योग्यता, ऐसा नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए मन में, आ जाता है लेकिन क्या करें। और वो जो हेड क्लर्क था उसके पास क्या था, कुछ तो नहीं था, लेकिन लोगों ने सेठ जी से कहा कि सब आपका लूट लूट के इसने भर लिया और किसी दिन उठा करके सब चलता बनेगा ये, आप ध्यान रखो जरा संभल के रहना। और एक बार अगर किसी की सच्चाई पर संदेह हो जाए तब तो फिर विश्वास बना रहना बहुत कठिन है। और मन में थोड़ा संदेह तो हुआ, पहले तो नहीं हुआ, पर बार बार जब लोग कहने लगे, एक ही झूठ को बार बार कहा जाए तो 100 बार कहने पर वो सच मालूम पड़ने लगता। किसी भी व्यक्ति के बारे में बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाए, वो झूठी भी क्यों ना हो, तो लगने लगता कि जब इतने लोग कह रहे हैं तो हुई ये कछु न कछु। और सेठ जी भी जो है सोचने लगे कि कब मौका मिले और जरा देख तो लूं। उस जो नौकर था, जो क्लर्क बड़ा बन गया था, बड़ा मुनीम हो गया था, उसके पास एक दो कमरे दे रखे थे सेठ जी ने, एक कमरे में खाना बनाता था, एक कमरे में सोता था, अपना सामान मामान धरे था। लेकिन जब वो दुकान पर आता था तो अपने खाना वाना के कमरे को बंद करके और बाजू वाले कमरे को खोल के उसमें जाता था, वो 5 मिनट बाद फिर निकल के दुकान जाता था। तो जो लोग ईर्ष्यालु थे उनने कहा, सुनो सेठ जी, वो अपना सब सामान उस दूसरे कमरे में हीरे जवाहरात भर के रखा, उसको एक बार देख करके फिर दुकान आता, वो दुकान से जब जाता वापस लौट के तो उसी कमरे में जाता, वो जाना चाहिए उसको खाने पीने वाले कमरे में, लेकिन वहां जाता पहले और उसमें अपना सब देख दाग के और जो भी दुकान से चुरा के ले जाता वो सब रखता होगा वहां पर। अब देख लो आप, सेठ जी ने कहा देखेंगे किसी दिन। और एक दिन मौका आ गया कि जैसे ही वो दुकान आने को था और खाना पीना खा के और अपने उस कमरे से बाजू वाले कमरे में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, सेठ जी ने फौरन जाकर के नॉक किया, खोलो दरवाजा, इसी समय खोलो दरवाजा। उस नौकर ने कहा कि खोलता हूं मालिक, 2 मिनट और। संदेह और बढ़ गया कि 2 मिनट क्यों, जरूर कोई ना कोई बात है, जल्दी खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। देखो तो जिस पर कल तक इतना विश्वास किया, आज जब संदेह हुआ तो कितनी जल्दी हम अपने मन को बदल लेते हैं, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है, जरा भी सम्मान की भावना नहीं रह गई और पीट पीट के दरवाजा मुश्किल में डाल दिया। दरवाजा उसने खोला और ज्यों कहते हो सामने खड़े ही था मुनीम, अंदर जाके सोच रहे थे कि हीरे जवाहरात भरे होंगे कमरे में, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं था, एक संदूक रखी थी कोने में। जो साथ में लोग थे ईर्ष्यालु, उनने कहा कि कुछ नहीं बिगड़ा, अभी उसी में है सारा खेल, संदूक में। और सेठ ने कहा कि लाओ चाबी दो उस संदूक की, हाथ जोड़ लिए उस मुनीम ने कि मालिक और सब कुछ करो लेकिन इस संदूक की चाबी तो नहीं दे पाऊंगा। तो संदेह और बड़ा, संदूक की चाबी क्यों नहीं देता है। देखो तो कोई किसी पर विश्वास करे और कोई उसके विश्वास को लगातार तोड़ता जाए, यही है क्या हमारा अपना जीवन। कि हम दूसरे के विश्वास को तोड़ दें। हम अगर किसी विश्वास नहीं कर पाते तो हमारा कोई हक नहीं है कि कोई किसी विश्वास करे तो हम उसको तोड़ दें। ये हमारी विनय नहीं कहलाएगी, ये हमारी सज्जनता नहीं कहलाएगी, ये हमारी शालीनता नहीं कहलाएगी। लेकिन क्या करें, ऐसा अपन करते हैं। और जब बहुत जिद की तो उस गरीब आदमी ने, जो कि मुनीम बन गया था बड़ा, उसने हाथ जोड़ के कहा कि चाबी तो आपको दे दूंगा लेकिन फिर अब आपकी दुकान पर नहीं रहूंगा, वापस लौट जाऊंगा। सेठ ने मन ही मन सोचा कि लौटे गई तू, तेरा राज खुल जाएगा। इसलिए वो मांग रहा है अपने विश्वास की भीख और ये दे रहा है उसको बदले में संदेह। और चाबी हाथ में ली, क्या था उस संदूक में? कुछ नहीं था। संदूक खोली तो एक फटी धोती, एक फटा अंगरखा और एक टोपी, तीन ही चीजें उसमें थीं। सेठ के हाथ में वे तीन चीजें आई। सेठ दंग है कि बात क्या हुई। उसने कहा मुनीम ये क्या है? उसने कहा मालिक यही मेरी संपत्ति है, मैं दुकान जाने से पहले इसको देख के दुकान पे जाता हूं आपकी और दुकान से वापस लौट के आता हूं तब भी इसे ही देखता हूं, क्योंकि मुझे याद रहे कि मैं इस हालत में आपके यहां आया था। मुझे यह अहंकार ना आ जाए कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं आज भी वही हूं, लेकिन अब जबकि आपके विश्वास पर मैं आपके यहां रहता था, आपका विश्वास टूट गया तो इन्हीं कपड़ों को वापस पहन के, आपका सब आपको सौंप के वापस लौट जाऊंगा। इस संसार में अगर हमारा कभी इस संसार के अहंकार से मन उब जाए तो कभी लौटने का मन हो इस संसार से तो तीन चीजें अपने साथ लेके लौटना। सच्चे देव गुरु शास्त्र ये तीन ही हैं जिन पर हम विश्वास लेकर के अगर इस संसार से लौटेंगे तो कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। लेकिन इन तीनों को खो करके अगर हमने संसार में अहंकार करके बहुत कुछ कमा भी लिया तब भी उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। मैं सोचता हूं कि शायद ये एक छोटी सी घटना हमारे जीवन को कुछ दिशा दे और बदले, पर कब बदलेगा हम सबका मन, हम सबका जीवन, ये तो कोई नहीं जानता। थोड़ी देर को भी अगर ये मन में विचार आ जाए कि सचमुच मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन बिगड़े और हम अच्छा ना बना पाए। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, हम अच्छे बने, अपना कल्याण करें और हमारे द्वारा जिसका कल्याण हो सके वो अपना कल्याण करे, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।